आज है 16 दिसंबर दिन बुधवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण रोकने के लिए दिए सख्त निर्देश। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई छापे के मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार में ठनी।
पार्लियामेंट में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के प्रेजेंट टेन्योर से इस रेड का कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं जानना चाहता हूं कि कल सीबीआई रेड में सीएम ऑफिस से जो चीजें सीज की गई उसमें नवंबर और दिसंबर महीने का फाइल मूवमेंट रजिस्टर क्यों सीज किया गया।
सऊदी अरब में स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को वोटिंग और चुनाव लड़ने की आज़ादी क्या वाकई उन्हें मजबूती देती है?
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन रॉयल फैमिली है जो हमेशा एंटी वुमेन इन कायदा रहा है सऊदी अरेबिया में, उसने कुछ प्रेशर फील किया है। पर जब आपको देखिए
दुनिया जहां में इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते शहर में दाखिल होने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स को बढ़कर दोगुना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2016 तक दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल गाड़ियों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। अदालत ने ये रोक 2000 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली डीजल एसयूवी और कारों पर लगाई है। इराक से आ रही खबरों के मुताबिक कतर के करीब 26 नागरिकों को अज्ञात बंदूकधारियों ने शिकार के शिविर से अगवा कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि ये बंदूकधारी करीब 54 वाहनों में सवार थे। सुबह सुबह इराक की सऊदी अरब से लगी सीमा के 65 किलोमीटर दूर इन लोगों का अपहरण किया गया। पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार के मुताबिक देश के सबसे वरिष्ठ राजनयिक एजाज चौधरी ने कहा है कि वो हैरान हैं कि सऊदी अरब ने चरमपंथ के खिलाफ अपने नए सैन्य गठबंधन में पाकिस्तान को भी शामिल किया है। एक अन्य वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि इस्लामाबाद से इस सिलसिले में कोई परामर्श नहीं लिया गया। कल ही सऊदी अरब ने चरमपंथ के खिलाफ 34 प्रमुख तौर पर मुस्लिम देशों के सैन्य गठबंधन की घोषणा की थी। सऊदी अरब के जेल में बंद ब्लॉगर रायफ बदावी की पत्नी ने एक पुरस्कार समारोह में सऊदी प्रशासन की आलोचना की है। इस समारोह में विचारों की स्वतंत्रता के लिए दिए गए सखारोव पुरस्कार को उन्होंने अपने पति रायफ बदावी की तरफ से स्वीकार किया। 2012 में अपने पति की गिरफ्तारी के बाद से ही वो उनकी आज़ादी के लिए अभियान चला रही हैं। रायफ बदावी को अपना धर्म छोड़ने और वरिष्ठ धार्मिक व्यक्ति का अपमान करने के लिए 10 साल की कैद और 1000 कोड़ों की सज़ा दी गई थी। यूरोपीय संसद में पुरस्कार लेते हुए इंसाफ हैदर ने कहा, रायफ कोई अपराधी नहीं है, वो बलात्कारी नहीं है, वो एक स्वतंत्र विचारक हैं। उन्होंने क्या अपराध किया है? बस ये कि एक ऐसे देश में अलग तरह से विचार किया जहां एक तरह के विचार की इजाजत है। ये थे इंसाफ हैदर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक जबरदस्त अंधड़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस दौरान गोल्फ बॉल जितने बड़े ओले पड़े हैं और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं। स्थानीय निवासियों ने कहा कि तूफान का शोर ऐसा था मानो मालगाड़ी चल रही हो। अधिकारियों का कहना है कि इस तूफान में कोई भी गंभीर रूप से घायल तो नहीं हुआ, लेकिन करीब 25 आवासीय जगहों को गंभीर नुकसान हुआ है। यूरोपीय फुटबॉल के निलंबित प्रमुख मिशेल प्लातिनी के वकीलों का कहना है कि वो विश्व फुटबॉल की संचालक संस्था फीफा की नीति समिति की सुनवाई में मौजूद नहीं रहेंगे। उनके कानूनी सलाहकारों के मुताबिक उन पर एक फैसला पहले ही सुनाया जा चुका है जो उनके निर्दोष होने की धारणा के खिलाफ जाता है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण को रोकने के लिए दिए गए निर्देश से। संसद में भले ही कुछ ठोस ना हुआ हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित होकर आज कई निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 31 मार्च 2016 तक दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल गाड़ियों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में दाखिल होने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। और क्या कहा है अपने निर्देश में, सुप्रीम कोर्ट ने बता रहे हैं सलमान रावी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली और एनसीआर के इलाके में 2000 सीसी से ज़्यादा वाले इंजन की डीजल गाड़ियों का पंजीकरण 31 मार्च 2016 तक नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि दिल्ली एनसीआर में एसयूवी गाड़ियां जैसे सफारी, फॉर्चूनर, इनोवा, इंडेवर और स्कॉर्पियो का पंजीकरण नहीं हो सकेगा। साथ ही दिल्ली में मोबाइल ऐप के सहारे चलने वाली टैक्सियों की सेवाओं को सीएनजी से ही संचालित करना होगा। आदेश में 2005 से पहले पंजीकृत किए गए कॉमर्शियल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी यूं कहा जाए कि दिल्ली की सरकार के साथ साथ दिल्ली पुलिस पर भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने की बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के प्रमुख मुक्तेश चंद्र से पूछा कि ये सब कुछ किस तरह संभव हो पाएगा।
आज का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर न्यूज में सुना है, जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाए। कमेटी के जो आदेश है वो तो इम्प्लीमेंट कर ही दिए हैं, लाइसेंस सीज करना। तो कल भी 850 के करीब लाइसेंस सीज हुए थे, 800-1000-1500 से ऊपर ये चली जाएगी। तो वील डू इट कॉन्टिन्यूसली, ये तो एक है। और आज का कुछ नॉन डेस्टिनेशन व्हीकल्स को लेकर कुछ न्यूज में था कि कुछ आदेश आया है, तो वो करेंगे। उसमें जो एडजॉइनिंग स्टेट का भी बहुत बड़ा रोल हो गया था। पूरी स्कीम का क्लैरिटी नहीं है। 25 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने कहा है कि 25 दिसंबर तक कुछ फाइनल स्कीम बनेगी, तो जैसी होगी उस तरह से फिर देखेंगे हम लोग हमारी क्या।
वहीं ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ नई डीजल की बड़ी गाड़ियों पर रोक लगाने से बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि प्रदूषण फैलाने वाले और भी बड़े कारक मौजूद हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं है। इस क्षेत्र पर नजर रखने वाले मुराद अली बेग कहते हैं,
और जो नया डीजल है इसका बुरे असर इतना खराब नहीं है। नई डीजल है उसकी एफिशिएंसी पुराने डीजल से बहुत बेहतर है। कंस्ट्रक्शन के जो डस्ट पोल्यूशन है वो भी बहुत, उससे भी बहुत असर है। बैल बकरी इनके जो गैस होता है इसके भी 20-25% है। डीजल गाड़ी का भाग इसमें, गाड़ी के अंदर, दिल्ली के गाड़ी के अंदर मेरे ख्याल में कोई 25-30% डीजल है। ट्रक का जो भाग है उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रक का बड़ा इंजन है।
वहीं ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एक्मा के महानिदेशक विन्नी मेहता का कहना है कि अभी तक सरकार प्रदूषण को काबू में करने के लिए किसी ठोस कानून को बना नहीं पाई है, और इसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा।
जो सबसे डेंजरस होता है जो एडहॉक पॉलिसी चेंजेस होते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी का ये नोटिफिकेशन आया, एक जो टेक्नोलॉजी रोड मैप था कि किस तरीके से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, वो डिसरप्ट हो जाता है। इस रोड मैप के तहत जो है इंडस्ट्री बहुत इन्वेस्टमेंट करती है, तमाम कैपेसिटी क्रिएट होती है, तमाम प्लांट्स लगाए जाते हैं और अकॉर्डिंगली लोगों को एम्प्लॉयमेंट होती है। तो अगर इस तरीके के एडहॉक डिसीजन होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया होता है वो वेस्ट हो जाता है।
पर्यावरण और प्रदूषण के लिए काम करने वाली संस्थाओं ने हाल ही की रिपोर्टों में कहा है कि सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही दिल्ली में वायु प्रदूषण में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण बच्चों और बूढ़ों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से दिल्ली को एक गैस चैम्बर की संज्ञा दी थी। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं इससे क्या प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में वायु प्रदूषण विभाग की प्रमुख अनुमिता राय चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले लिए हैं और इससे अर्जेंट एक्शन माना जाना चाहिए। उनका कहना था,
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई पोल्यूशन सोर्सेस के ऊपर कदम लेने की बात आज हो रही है, जैसे ट्रैश बर्निंग, रोड डस्ट, तो इन सारे तमाम जो प्रदूषण सोर्सेस हैं इनके ऊपर कार्रवाई के लिए आज निर्देश दिया गया है। पर एक और बात हमें ध्यान रखना होगा कि इसके साथ साथ उच्च न्यायालय ये भी कह रहे हैं कि ये इसको आपको एक प्रोसेस में देखना होगा, क्योंकि अब जो आने वाली जो सुनवाई होगी उसमें और भी लॉन्गर टर्म सॉल्यूशंस के बारे में डिसीशंस लिए जाएंगे। जैसे गाड़ियों के लिए जो मानक बना रहे हैं, एमिशंस के लिए जो मानक बन रहे हैं अभी, कि कितनी जल्दी हम यूरो 6 तक पहुंच पाए, कितनी जल्दी जो आज दिल्ली में जो मानक है वो पूरे देश भर में लागू किया जाए, उसके साथ साथ जो हमारे शहरों में जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर किस तरीके के कदम हम ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रैटेजी को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये जो आज जो सुनवाई हुई है आपको इसको एक शुरुआत के तरीके से आपको देखना होगा, और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट शुरुआत है।
यहाँ ये जानना चाहेंगे कि आपका ये कहना है कि ये अर्जेंट एक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जैसे लंबी अवधि की आप बात कर रही थी उसके लिए अभी से किस तरह की तैयारी की जा सकती है?
तैयारियां करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी पूरी ध्यान हमें देना होगा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्योंकि अब सरकार को जब हमने निर्देश दे चुके हैं हम, अब सरकार के तरफ से ये निर्देश को इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए ढांचा को बनाना, ये बहुत ही जरूरी है। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि इस बार की जो सुनवाई और जो निर्देश आए हैं वो सिर्फ दिल्ली शहर के लिए नहीं है, ये पूरी नेशनल कैपिटल रीजन के लिए है। जो बाकी जो हमारे आस पास के जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए भी निर्देश जारी की गई है। और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि आप अगर प्रदूषण को कम करना चाहते हैं तो प्रदूषण तो कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं मान के चलती, तो इसके लिए पूरी एक एयर शेड का पूरा अप्रोच लेना बहुत ही जरूरी है।
दिल्ली की बात अगर हम छोड़ दें, दिल्ली में चलिए अब कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूषण जो खतरा सामने पेश कर रहा है आम लोगों के सामने, लेकिन और भी कई शहर हैं भारत में जो बहुत ही पॉल्यूटेड हैं, प्रदूषित हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे ही कदम अब इन शहरों में, जो 13 प्रदूषित शहर हैं भारत के, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल चुका है, वहाँ भी अब उठाए जाने चाहिए?
हाँ जी, क्योंकि अगर आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो आंकड़े हैं उसको अगर आप देखें तो इससे साफ नजर आता है कि जो हमारे देश में 50% से भी ज्यादा शहरों में आज प्रदूषण की मात्रा है जो सरकार के तरफ से क्रिटिकल बोला जा रहा है। तो इसके लिए हमें जो ध्यान देना होगा कि किस तरीके से हम पूरी एक नेशनल लेवल की एयर क्वालिटी प्लानिंग हम कर सकें। और आज दिल्ली में जो शुरुआत हुई है, जो हम सीख रहे हैं, इसको हमें आगे बढ़ाना ये बहुत जरूरी है, और बाकी शहरों में भी हमें ये करना पड़ेगा।
ये थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में वायु प्रदूषण विभाग की प्रमुख अनुमिता राय चौधरी। आमतौर पर रोज अखबारों में आपको दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर खबरें पढ़ने को मिल जाएंगी। सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं और आज सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त निर्देश भी दे दिए, लेकिन आम लोगों का क्या मानना है, यही जानने के लिए वैभव श्रीवास्तव निकल पड़े दिल्ली की सड़कों पर।
इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में। कुछ ही दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण के स्तरों की वजह से दिल्ली को एक गैस चेंबर करार दिया था। आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब से ग्रीन टैक्स में बढ़त होगी और डीजल की गाड़ियों पर रोक टोक लगेगी। आइए जानते हैं दिल्ली वालों से उनकी इस बारे में क्या राय है।
नहीं, इससे फायदा तो नहीं मिलना चाहिए और ना मिलेगा, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि जो इनकी ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट की जो DTC बसें हैं वो इतना ही पॉल्यूशन छोड़ती है कि आप पूछे मत, पहले अपने वाहन पे तो पाबंदी करें। तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि नई गाड़ियों के डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद करें, फिर दिल्ली गवर्नमेंट भी अपनी जो डीजल गाड़ियां उन पे भी रजिस्ट्रेशन बंद करे और पेट्रोल गाड़ियां लाए और पेट्रोल पे सब्सिडी दे, तब तो फायदा भी है कुछ नहीं, तो आम जो जनता है उसको तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
ऑटो चलाते हैं, CNG का कोई फायदा नहीं होगा डीजल गाड़ियां बंद होने से, ऐसा पब्लिक बैठे ही नहीं, इसलिए कोई फायदा नहीं, कुछ भी कर लेंगे, कुछ नहीं होना, ना जाम कम होगा ना कुछ कम होगा।
हम ड्राइवर आदमी हैं, ड्राइविंग करते हैं, ठीक है जी। अगर ये डीजल की गाड़ियां जो गवर्नमेंट जो कोर्ट ने जो फैसला किया है अगर उसके लिए कि बंद करने के लिए वो कहा है, तो ये जो हम ड्राइवर आदमी हैं, अगर गाड़ियां बंद हो जाएंगी, डीजल की गाड़ी अगर दिल्ली में नहीं चलेंगी, ज़्यादातर मतलब ये कि लाचारी हो जाएगी। आदमी एक आदमी काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कहीं ड्यूटी कर रहा है, जब उसकी मालिक की गाड़ी नहीं चलेगी तो आदमी क्या करेगा फिर? एक आदमी घर में बैठ के तो अपने घर परिवार को नहीं चला सकता, और हर आदमी को कई नौकरी नहीं मिल सकती। हमारे तो ये भाई सुबह निकलते हैं घर से और शाम को रात को कोई टाइम नहीं होता, हमारे तो टैक्सी चलाते हैं, टाइम टेबल भी नहीं है, और फिर हम टैक्सी वालों को तो बदनाम कर रखा है ज़्यादातर, क्योंकि हम तो अपनी लाइन से ही चलते हैं हमेशा। ऐसा नहीं करना चाहिए, डीजल की गाड़ी अगर दिल्ली के अंदर बंद हो जाएंगी तो पब्लिक है जो जनता है वो लाचार हो जाएगी।
हम बहुत पहले सुन रहे हैं कि डीजल की सब्सिडी का बेनिफिट जिनके लिए है वो नहीं उठा पाते हैं, जो बड़े लोग हैं वो उठा पाते हैं। पिछले महीने कर्फ्यू डे कराया था, कुछ एरिया में कराया था, वहाँ पर 40% पॉल्यूशन में रिडक्शन आया था, तो एक दिन से इतना इंपैक्ट होता है, तो मैं भी ट्राई करके देखने में क्या जाता है।
तो लोग भी हैं बढ़ते प्रदूषण से चिंतित, आम लोगों से बात कर रहे थे वैभव श्रीवास्तव।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
दिल्ली सचिवालय में CBI के छापे पर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को घेरने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि CBI उनके कार्यालय में दिल्ली जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA की जांच से जुड़ी कुछ फाइलें तलाश रही थी। उनका कहना था कि DDCA की दिल्ली सरकार की ओर से कराई गई जांच में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर कई आरोप लगाए गए हैं। इस पर विस्तार से एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जुबैर अहमद।
कल दिल्ली सचिवालय में CBI के छापे के बाद ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कटघरे पर खड़े हैं, लेकिन आज वित्त मंत्री अरुण जेटली मुश्किल में नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने उन पर सीधा वार किया है, जबकि कांग्रेस ने उनसे इस्तीफे की मांग की है। केजरीवाल ने बुधवार सुबह एक ट्वीट करके कहा, मेरे कार्यालय से जिन कागजात को जब्त किया गया है उनका उस मामले से कोई संबंध नहीं है जिसकी जाँच की जा रही है। आगे श्री केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई वाले डीडीसीए की फाइल देखने आए थे। इसी दावे को आगे बढ़ाते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा,
कल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में बैठ के डीडीसीए की फाइलें पढ़ी गई हैं, जो कल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था। वहाँ डीडीसीए की फाइलें थी, जो डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जो दिल्ली सरकार की कमेटी की रिपोर्ट थी, वो फाइलें कल उसी रूम में रखी गई थी जिसमें रेड डाली गई है।
मंगलवार को ये मामला संसद में भी उठा। इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में एक बयान दिया। उन्होंने केजरीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि छापे एक घोटाले के सिलसिले में डाले गए, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि संसद में श्री जेटली ने गलत बयानी से काम लिया।
पार्लियामेंट में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के प्रेजेंट टेन्योर से इस रेड का कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं जानना चाहता हूँ कि कल सीबीआई रेड में सीएम ऑफिस से जो चीजें सीज की गई उसमें नवंबर और दिसंबर महीने का फाइल मूवमेंट रजिस्टर क्यों सीज किया गया।
और अब कांग्रेस पार्टी ने अरुण जेटली के खिलाफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए में कथित अनियमितताओं को लेकर उनसे इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने अरुण जेटली पर सीधा वार करते हुए कहा,
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आदेश दिए कि इनकी जांच करी जाए, और इस जांच के अंदर खुद मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत सिन्हा ने कहा है कि चार ऑफिसर्स वर नेम्ड। दीज ऑफिसर्स आर श्री सुनील देव, श्री एसपी बंसल, श्री नरेंद्र बत्रा एंड श्री सीके खन्ना। और जो भी स्पोर्ट्स में जरा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं वो जानते हैं कि ये नरेंद्र बत्रा, सीके खन्ना, बंसल, ये सब के सब लोग अरुण जेटली जी के कितने क्लोज हैं। तो आज सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कंपनी लॉ बोर्ड के मिनिस्टर अरुण जेटली जी, डीडीसीए के प्रेसिडेंट अरुण जेटली जी जिनके समय में ये अनियमितता हुई, और ये सारे के सारे लोग जो अरुण जेटली जी के सबसे नजदीक हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अरुण जेटली जी जो इसके मिनिस्टर इंचार्ज हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके रहते हुए एक फेयर प्रोब हो सकता है, ये उम्मीद करना ही कठिन है और ये नहीं संभव।
उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग करते हुए अरुण जेटली के इस्तीफे की भी मांग कर डाली।
कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ही इसको प्रोब करे, और जब तक ये प्रोब पूरा ना हो जाए अरुण जेटली जी को मंत्री पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके अपने प्रेसिडेंटशिप के काल के दौरान उनके अपने ही समय के ऊपर उनके अपने नजदीक के लोगों का खुद आरओसी ने उनके ऊपर ऑफेंसेज ये प्रूव किए हैं।
कल अरुण जेटली ने अपने खिलाफ इल्जाम को खारिज करते हुए कहा था, ये बिल्कुल बेबुनियाद और बकवास है और इसका जवाब देना भी वो उचित नहीं समझते। सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय की तीसरी मंजिल पर स्थित केजरीवाल के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार के कार्यालय पर छापा मारा था। सीबीआई उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन करना चाहती है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
उधर अब से थोड़ी देर पहले सीबीआई ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए केजरीवाल सरकार के आरोपों को बेबुनियाद बताया। सीबीआई की प्रवक्ता देवप्रीत सिंह का कहना था,
Recently, incorrect information is being spread by certain quarters since yesterday to discredit the agency with the intent of...
कुछ राजनीतिक गलियारों में कल से जांच समिति को बदनाम करने और जांच कार्य में बाधा डालने के लिए सफेद झूठ फैलाए जा रहे हैं। केंद्रीय जांच समिति ने ऐसी किसी भी फाइल को जब्त नहीं किया जिसका जांच से लेना देना ना हो। सभी 14 जगहों पर छापा मारते वक्त कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक स्वतंत्र गवाह मौजूद थे। तलाशी ली गई और जब्त किए गए सभी कागजों और फाइलों की सूची कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। समिति ने जांच करते वक्त किसी भी व्यक्ति को वहाँ आने जाने से नहीं रोका। समिति ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में ना ही तलाशी हुई और ना ही वहां कोई कागज जब्त किया गया।
सीबीआई ने रखा अपना पक्ष। ये थी सीबीआई की प्रवक्ता देवप्रीत सिंह। आज से 3 साल पहले और आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर 2012 को एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ हुई सामूहिक बलात्कार की घटना ने, रोंगटे खड़े वाली घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस घटना में इस छात्रा की मौत हो गई थी, लेकिन तीन साल बाद क्या चाहती है पीड़िता की माँ। हमारे सहयोगी विनीत खरे ने पीड़िता की माँ आशा देवी से बात की। आप इस बातचीत को bbchindi.com पर देख सुन सकते हैं और इससे संबंधित कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं। और अब दुनिया जहाँ। सऊदी अरब में बीते दिनों नगरीय निकाय के चुनाव हुए जिसमें महिलाओं को पहली बार वोट देने और चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। महिलाओं ने न केवल चुनाव लड़ा बल्कि उनमें से कुछ को जीत भी मिली। ड्राइविंग जैसे बुनियादी हक से महरूम महिलाओं के लिए सऊदी अरब के पुरुष प्रधान समाज में चुनाव जीतने के क्या मायने हैं? क्या ये बदलाव महज प्रतीकात्मक हैं या सऊदी अरब के रूढ़िवादी कहे जाने वाले समाज में वाकई बदलाव आ रहा है? दुनिया जहां में इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं संदीप सोनी।
दुनिया जहान। सऊदी अरब का जिक्र आते ही जहन में तस्वीर उभरती है एक ऐसे देश की जहां समंदर किनारे आधुनिक तकनीक से बनी आसमान छूती चमचमाती इमारतें हैं। एक ऐसा देश जहां के स्त्री पुरुष अपने खास तरह के परिधान के लिए जाने जाते हैं, जहां हर मुसलमान हज के लिए जाना चाहता है। एक ऐसा देश जो पेट्रोल डीजल के मामले में दुनिया का सरताज है, जिसके पास हथियारों और लड़ाकू विमानों की कोई कमी नहीं है। सऊदी अरब के साथ ही जिक्र आता है औरतों के साथ भेदभाव का, जहां शासन व्यवस्था में लोकतंत्र के निशान खोजना लगभग नामुमकिन है। उसी सऊदी अरब में बीते दिनों नगरीय निकाय के चुनावों में महिलाओं को पहली बार वोट डालने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, जहां महिलाओं ने न केवल वोट दिए बल्कि चुनाव में जीत भी दर्ज की।
It's my first time to elect in our country.
I think we're proceeding gradually to participate, fully participate in the society.
क्या सऊदी अरब बदल रहा है? यदि हाँ तो इसकी वजह क्या है? दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अरब अफ्रीका अध्ययन केंद्र के प्रमुख प्रोफेसर मुजीबुर रहमान कहते हैं,
सऊदी अरब बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी है। बेसिकली वो इस्लाम को ट्रू स्पिरिट में फॉलो करना चाहते हैं और ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो, जिसकी वजह से वहाँ जो नॉर्म सोसाइटी के नॉर्म्स चले आ रहे थे और फिर जो इस्लाम का जो इंटरप्रिटेशन का एक तरीका था, उसके हिसाब से औरतों को वो हक नहीं दिए गए थे। ग्लोबलाइजेशन के बाद जिस तरह से दुनिया के हर समाज पे असर पड़ रहा है, तो वहाँ पर भी असर पड़ रहा है। तब्दीली की जो वजह है सबसे बड़ी मेरे नज़र में, जो मॉडर्न एजुकेशन है, वहाँ की लड़कियाँ भी मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रही हैं, जो सोर्सेज हैं ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज उनके पास अवेलेबल हैं, वेल ऑफ हैं, रिच हैं। अब जाहिर है कि उनकी तरफ से भी डिमांड था, मुतालबा था कि उनको भी वो हकूक मिलने चाहिए जो औरतों को दूसरे समाजों में मिले हुए हैं। और बहुत दिनों तक सऊदी समाज या सऊदी हुकूमत इसको रोक नहीं सकती थी।
सऊदी अरब में महिलाओं की बदलती भूमिका पुरुषों के गले नहीं उतर रही। जिस समय महिलाएं वोट डाल रही थीं, उसी समय कुछ पुरुष सड़कों पर खुलेआम इसका विरोध कर रहे थे।
हम जानते हैं कि औरतें हमारे समाज का आधा हिस्सा हैं, लेकिन यहाँ उनकी जगह नहीं है। उनकी जगह घर में है। उन्हें नई पीढ़ी को पालना पोसना है। यदि हमने उन्हें घर से बाहर जाने की इजाज़त दी तो हमारे बेटों को कौन देखेगा?
सऊदी अरब में महिलाओं की बदलती भूमिका पर विरोध के इस तरह के स्वर क्यों उठ रहे हैं? क्या समाज इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है? एक गैर सरकारी संगठन से जुड़ी नाइश हसन रहती भारत में हैं, लेकिन सऊदी अरब के समाज को नजदीक से समझती हैं। वो बताती हैं,
जब कंफर्ट जोन में दखल होता है तो इस तरह की विरोध की आवाज जरूर उठती है, और ये सऊदी अरब के मर्दों के कंफर्ट जोन में एक दखल है। हाँ, ये बात है कि दुनिया में जिस तरह से बदलाव आया है सऊदी अरब में, उसमें सबसे देर में बदलाव आया है, लेकिन बहुत सी और मिसालें हैं जो ये साबित करती हैं कि औरतें बदलाव के लिए आगे आ रही हैं। मसलन अभी पिछले साल एक फिल्म उन लोगों ने बहुत अच्छी बनाई थी, रशदा करके, जिसमें एक बच्ची साइकिल चलाती है और साइकिल चला के वो अपना राइट कैसे लेना चाहती है। भेदभाव तो है, क्योंकि आप सड़क पे भी जा रहे हैं तो कोई आपको शरा सिखाने लगेगा, आप सर ऐसे ढकिए, ऐसे चलिए, ये बताने के लिए लोग बहुत तेज। अभी वहाँ पे शरिया के नाम पे बवाल खड़ा होगा, औरत मर्द के नाम पे बवाल होगा।
सऊदी अरब की सत्ता पर साउथ शाही परिवार का नियंत्रण रहा है। वर्ष 1932 में अस्तित्व में आने के बाद से किंग अब्दुल अजीज और उनके बेटे सत्ता पर आसीन रहे हैं। इस समय देश का नेतृत्व किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउथ के हाथों में है। जानकार मानते हैं कि चुनाव कराकर और महिलाओं को मौका देकर सऊदी अरब एक तरह का दिखावा कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार सीमा मुस्तफा कहती हैं,
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी जो रॉयल फैमिली है जो हमेशा एंटी वुमेन इनका एक कायदा रहा है सऊदी अरेबिया में, वो उसने कुछ प्रेशर फील किया है। तो ऑब्वियसली अंदर से सोसाइटी में एक तनाव है, इसलिए उन्होंने ये जरा सी एक ओपनिंग दी है जिसमें इन्होंने इलेक्शन अलाउ किया है। पर जब आप ये देखिए, अगर इसको देखिए कि किस तरीके से किया है, तो फिर मालूम पड़ता है कि बहुत ही रिलक्टेंटली और असल में दिखावा है कि हमने खोला है, पर एक्चुअली कुछ खास उन्होंने किया नहीं है। क्योंकि 2106 या 8 सीट थी जो इलेक्शन के लिए थी, और उसमें 13 औरतें जिनको म्यूनिसिपल काउंसिल सीट्स मिली हैं, तो खाली 8% सऊदी अरेबिया की इलेक्टेड काउंसिल मेंबरशिप है। खाली 900 विमेन थी जो कैंडिडेट्स थी, और कैंडिडेट्स आपके थे 6500 करीब जो 284 काउंसिल्स के लिए खड़े हुए थे। और मोस्ट ऑफ द विमेन जिन्होंने अप्लाई भी किया उनको बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा विमेन कैंडिडेट्स को कोई ना कोई प्रीटेक्स्ट पे या कोई ना कोई चीज ले करके उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया।
जानकार इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि सऊदी अरब ने भले ही महिलाओं को वोट डालने और चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया है, लेकिन ये हक कब तक कायम रहेगा कोई नहीं कह सकता। पर सऊदी अरब जैसा संपन्न मुल्क अपनी आधी आबादी के साथ इतने वर्षों से इस तरह का बर्ताव आखिर क्यों करता रहा है? सीमा मुस्तफा कहती हैं,
क्योंकि एक पॉलिटिक्स ही इसी पे है, ये कंट्रोल करना चाहते हैं इसी तरीके से। क्योंकि अगर ये इनकी जो रॉयल फैमिली जो इतने सदियों से चली आ रही है, अगर ये डेमोक्रेटाइज करेंगे और ये अगर जितने लोग उनके यहाँ हैं और हर सिटीजन को इक्वल राइट्स देंगे, तो फिर इनकी जो एक लीडरशिप है वो ज्यादा चैलेंज होगी। तो उन्होंने आधी तो अपना पॉपुलेशन को बंदिश में रख दिया है इस तरीके के कानूनों के साथ, और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं एक वहाबिज्म, जो वहाबिज्म आई थिंक सऊदी अरेबिया को छोड़ करके और कुछ गल्फ कंट्रीज को छोड़ के वहाँ पे वेस्ट एशिया में देखे तो है ही नहीं।
मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब में महिलाएं और लड़कियां इस कदर भेदभाव का शिकार हैं कि उन्हें कानूनन पुरुष की मातहत माना गया है। लेकिन फिर भी सऊदी अरब में स्थानीय निकाय के हालिया चुनाव और चुनावी नतीजों से महिलाओं का उत्साह बढ़ा है, और वो इसे गैर बराबरी वाले समाज में मर्दों के साथ बराबरी की दिशा में पहला कदम मान रही है। संदीप सोनी, बीबीसी दिल्ली।
आप संदीप सोनी का दुनिया जहां कल सुबह 8 बजे विश्व भारती में दोबारा सुन सकते हैं। आपको सऊदी अरब पर दुनिया जहां कैसा लगा हमें जरूर लिखेगा। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते शहर में दाखिल होने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है, और 31 मार्च 2016 तक दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल गाड़ियों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इराक में कतर के करीब 26 नागरिकों को अज्ञात बंदूकधारियों ने अगवा कर लिया है। सुबह सुबह इराक की सऊदी अरब से लगी सीमा के 65 किलोमीटर दूर इन लोगों का अपहरण किया गया। पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ राजनयिक एजाज चौधरी ने कहा है कि वो हैरान है कि सऊदी अरब ने चरमपंथ के खिलाफ अपने नए सैन्य गठबंधन में पाकिस्तान को भी शामिल किया है। सऊदी अरब के जेल में बंद ब्लॉगर राइफ बदावी की पत्नी इंसाफ हैदर ने एक पुरस्कार समारोह में सऊदी प्रशासन की आलोचना की है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक ज़बरदस्त अंधड़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस तूफान में कोई भी गंभीर रूप से घायल तो नहीं हुआ, लेकिन करीब 25 आवासीय जगहों को गंभीर नुकसान हुआ है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त।